देख स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से फिलिप्पियों नामक पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से नए नियम की पत्री में से फिलिपियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन में हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा से अपने पिछले अध्ययन में आशीषों को प्राप्त किया है और आशा करते हैं कि आज भी हम अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। तो आइए हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, प्रार्थना करें और परमेश्वर से अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सामर्थ्य और जीवित वचन के लिए जिसके द्वारा से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, आपके वचन से मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि प्रभु जब हम आपके वचन में से सुने तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, किसी प्रकार की तनाव में हैं, परेशानी में हैं, आप उनकी भी सुधि लें, उनकी भी सहायता करें ताकि प्रत्येक जीवन आप में आनंदित होने पाए। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हमने देखा कि मनुष्य में मसीह का मन हो तो उसका स्वभाव कैसा होगा, और इसके बाइबल आधारित तीन सर्वोत्तम उदाहरण हमने देखे थे, पौलुस, तीमुथियुस और इफ्रुतीतुस। ये तीनों ही कलीसिया के अति प्रिय सेवक थे और एक दूसरे के अति विश्वासी योग्य भी थे। इफ्रुतीतुस को फिलिपी की कलीसिया ने पौलुस से भेंट करने के लिए भेजा था, परंतु वह वहां आकर बहुत बीमार हो गया था। तो आइए अब हम आगे देखेंगे फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहां तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस ही पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। मैं आपको यहां एक ऐसी बात दिखाना चाहता हूं जिस पर आपका शायद ध्यान ना गया हो। बहुत से विश्वासी इस भ्रम में हैं कि विश्वासियों को बीमार नहीं होना चाहिए, और यदि वे बीमार हो भी जाएं तो उन्हें विश्वास रखना है कि परमेश्वर चंगा करेगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, पौलुस ने इफ्रुतीतुस को चंगा क्यों नहीं किया? वह इतना बीमार था कि मरने पर था। पौलुस और अन्य प्रेरितों को चिन्ह और चमत्कार के वरदान प्राप्त थे, क्योंकि उस समय नया नियम नहीं था। जिस समय पौलुस सुसमाचार सुना रहा था उस समय नया नियम नहीं लिखा गया था। नया नियम का दूसरा भाग तो स्वयं पौलुस ने ही लिखा था। मेरे प्रियो, जब वह किसी नए क्षेत्र में प्रभु यीशु का शुभ संदेश सुनाता था तब उसका अधिकार क्या था? उसका एकमात्र अधिकार चिन्ह और चमत्कार था जिसमें चंगाई का वरदान था। अब पौलुस अपनी सेवा के अंत समय में था। आपको स्मरण रखना है कि पौलुस की देह में भी कांटा था जिसे प्रभु यीशु ने निकाला तो नहीं, परंतु पौलुस को उसे सहने के लिए अर्थात सहन करने के लिए अनुग्रह प्रदान किया गया। आपको यह भी स्मरण होगा कि तीमुथियुस को पेट की परेशानी थी। यदि पौलुस के पास चंगाई का वरदान था तो उसने तीमुथियुस को चंगा क्यों नहीं किया? उसने उसे सुझाव दिया कि वह दवाई स्वरूप दाखरस थोड़ा थोड़ा पिया करे। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 20 पद में पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा कि उसने त्रुफिमुस को मिलेतुस में छोड़ा है क्योंकि वह बीमार था। पौलुस ने उसे चंगा क्यों नहीं किया? अब यहां इफ्रुदीतुस है जो बहुत बीमार है। वह कहता है कि परमेश्वर ने उस पर दया की, अर्थात उसकी चंगाई स्वाभाविक रूप से हुई न कि चमत्कारी रूप से। पौलुस ने उसके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने प्रार्थना के उत्तर में उसे चंगा किया। पौलुस ने उसे चंगा नहीं किया क्योंकि इस समय तक विश्वासियों का ध्यान महान वैद्य प्रभु यीशु की ओर आकर्षित होने लगा था, जबकि प्रेरित अभी भी जीवित थे। मेरे मित्रों, इस पत्री में मसीह के मन की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, एक दीनता का मन। यदि मैं विश्वास का चंगा करने वाला हूं तो मैं सबकी आंखों में चढ़ जाऊंगा, मैं एक प्रसिद्ध महापुरुष हो जाऊंगा। अच्छा है कि मैं नहीं हूं। महान वैद्य तो प्रभु यीशु है। जब मेरे एक मित्र को कैंसर की बीमारी हुई और यह समाचार फैला तो मेरे पास भी बहुत सारे पत्र आए जो मुझे किसी न किसी चंगा करने वाले के पास जाने की सुझाव देते थे ताकि मैं उसे लेकर के जाऊं। मेरे मित्रों, एक अच्छे कैंसर विशेषज्ञ को छोड़ किसी के पास वह नहीं गया। उसने कहा कि उसे जीवित रहना है, और उसने कहा कि वह अपने सबसे बड़े वैद्य से निवेदन किया करेगा कि वह मुझे जीवन दे और मेरी चंगाई का श्रेय उसी को जाता है। जी हाँ, वह प्रचारक पौलुस अपनी सेवा के अंतिम समय में चंगाई के चमत्कार पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है। उसके साथ एक मरणहार प्रचारक है। पौलुस उसे हाथ रखकर चंगा नहीं कर रहा है क्योंकि पौलुस ध्यान का केंद्र उसी को बना रहा है जिसे वास्तव में ध्यान केंद्र होना है, प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, कई बार हम लोगों की ओर आशा लगा बैठते हैं, परंतु पौलुस यहां पर हमें यह शिक्षा देता है कि हमारी केंद्र बिंदु परमेश्वर है। अब पौलुस इफ्रुदीतुस को फिलिपुस अर्थात फिलिपी को भेज रहा है। तो आइए हम देखें फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 28 पद में, इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। पौलुस चाहता था कि वे आनंद मनाएं, दुख नहीं, और मेरा भी शोक घट जाए। वह फिलिपी की कलीसिया के लिए चिंतित था कि वे आनंद मनाने की अपेक्षा दुख मना रहे थे। तब हम आगे पढ़ते हैं फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय उसके 29 पद में, इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना। पौलुस फिलिपी के इस प्रचारक के प्रति कैसा उदार दिल था, परंतु इफ्रुतितुस जैसा मनुष्य है वैसा ही प्रेम के योग्य भी और सम्मान के योग्य भी है। मेरे मित्रों, हमें परमेश्वर के वचन के शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। यदि उसे शिक्षा का वरदान है तो हमें शिक्षक और परमेश्वर के वचन दोनों का सम्मान करना चाहिए। हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन पर केंद्रित होना चाहिए। मैं उन सभाओं और सेमिनारों में कभी भी भाग नहीं लेता जिनमें समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है, नशे की समस्या, शराब की समस्या, यौन समस्या, युवाओं की समस्या, वरिष्ठ नागरिकों की समस्या और समस्याओं के मनोवैज्ञानिक समाधान। मेरे मित्रों, समस्या तो यह है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर नहीं आते हैं। परमेश्वर का वचन ही हमें प्रभु यीशु का दर्शन कराता है, उसका मन हम पर प्रकट करता है। यदि हम वचन पर ध्यान देंगे तो इन समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 30 पद में लिखा है, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। हम फिर देखते हैं कि इफ्रुदितुस प्रभु की सेवा में था। इस सेवा के लिए उसे प्रभु के मन की आवश्यकता थी। इन सेवकों के बारे में पढ़कर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। यह रोमी साम्राज्य में पहली शताब्दी का समय था। कैसर अर्थात राजा अगस्तुस ने विश्व पर विजय प्राप्त की थी। रोम के नियम संपूर्ण विश्व पर लागू होते थे। रोम के कानून में दया की गुंजाइश नहीं थी, इस कारण हर जगह सुव्यवस्था थी। उस युग में रोमी साम्राज्य में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं थी जो सिर उठाए। ऐसे समय और वातावरण में यह छोटा सा मनुष्य और उसका सा चित्रवृत्ति रखने वाला प्रचार करने निकले कि जगत का स्वामी एक परमेश्वर है, जिसने रोमी क्रूस पर पाप मोचन का कार्य किया और मानव जाति के लिए करुणा का प्रबंध किया, और उसके इस प्रचार के कारण असंख्य मनुष्य प्रभु के पास आए। मेरे प्रियो, अब मैं अपनी कल्पना में पौलुस को एक रोमी सैनिक के साथ जंजीर से बंधा देखता हूं। वह वहां क्या कर रहा है? वह मसीह की गवाही दे रहा है और मसीह में आनंदित है। उसमें मसीह का मन है। मैं एक युवक को भी उस नगर में घूमते फिरते देख रहा हूं। आप कहते हैं कि आप अभक्त समाज में निर्वाह नहीं कर सकते। तिमोथियुस को देखिए, वह कैसा उत्तम निर्वाह कर रहा था। उसमें मसीह का मन था। मैं इप्रोदितुस को भी देखता हूं। वह यूरोप के फिलिपी नगर में है। फिलिपी नगर रोमी प्रांत था और अन्य जाति समाज था। जहां इपिप्रोदितुस कलीसिया का पास्टर था, उसमें भी मसीह का मन था। अब मैं स्वयं को देखता हूं और कहता हूं, बहाने बनाना बंद कर। यदि उस प्रथम शताब्दी में ये लोग मसीह का मन अपना सकते थे, तो आज हम अपने नगर में और समाज में 21वीं शताब्दी में मसीह का मन क्यों नहीं अपना सकते? मसीह का मन नकल करने से नहीं प्राप्त होता है। जी हां, हमें पवित्र आत्मा को समर्पण करना है। वही हम में मसीह का मन उत्पन्न करता है। आज इसकी हमें कैसी घोर आवश्यकता है, और यही कारण है कि आज हम डरते हैं और मसीह का मन हम में नहीं है। मेरे मित्रों, यहां पर फिलिपी की पत्री 2 अध्याय का समापन होता है और अब हम अध्याय 3 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। अध्याय 3 का विषय है मसीही जीवन का मूल्य है। हमने मसीही जीवन का सिद्धांत तो देखा है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ। हमने मसीही जीवन का नमूना भी देखा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव अर्थात मन था, वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। अब हम मसीही जीवन का मूल्य देखेंगे जो पौलुस की गवाही में प्रकट है। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे ऊपर बुलाया है। मेरे मित्रों, इस अध्याय में हम देखेंगे कि पौलुस ने अपने अतीत की लेखा विधि बदल दी थी, उसने अपने भविष्य की आशा में भी परिवर्तन किया और जहां तक उसके वर्तमान का प्रश्न था, उसने अपने उद्देश्य में भी परिवर्तन किया। पौलुस को विश्वास था कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपना राज्य अवश्य स्थापित करेगा। इस विश्वास में उसने किसी प्रकार का परिवर्तन आने नहीं दिया, परंतु उसने यह अवश्य देखा कि विश्वासियों के लिए मसीह में एक भव्य महिमाशाली आशा है, यहूदी और अन्य जाति दोनों के लिए, जब वह अपनों को इस संसार से ले जाने के लिए आएगा। पौलुस ने अपने अतीत की लेखा विधि में परिवर्तन किया। तो आइए हम पढ़ें फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। ध्यान दीजिए, इसलिए हे मेरे भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस पत्र का अंत करने जा रहा है। पौलुस चाहता था कि फिलिपियों के विश्वासियों को धन्यवाद का पत्र लिखे, परंतु हम अभी पत्र के मध्य में ही हैं। अतः परमेश्वर का आत्मा उसे और भी लिखने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं किसी सभा में प्रचार कर रहा था। सभा के पश्चात मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि मैंने कहा, अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, और फिर मैं 15 मिनट तक कहता चला गया। मेरी पत्नी ने कहा, आपने अंत नहीं किया था। मैंने उससे कहा कि मैं पौलुस के चरण चिन्हों पर चल रहा था। उसका अंतिम संदेश था, प्रभु में आनंदित रहो। यदि वह आज जीवित होता तो उसका अंतिम संदेश आज भी यही होता। उसने स्पष्ट प्रकट किया है कि पौलुस, तीमुथियुस और इपफ्रुदीतुस तीनों में मसीह का मन अर्थात स्वभाव था। वे रोग में और बंदी गृह में भी आनंद करते थे। आरंभिक कलीसिया भी सताव की उत्पीड़न में आनंद करती थी। पौलुस उनसे यह भी कहता है कि उन्हें पत्र लिखना उसके लिए कष्टदायक नहीं था। गलातियों की पत्री और कुरिन्थ की कलीसियाओं को पत्र लिखते समय उसके मन पर भारी बोझ था, परंतु फिलिपी की कलीसिया उसके लिए बड़े आनंद का कारण थी और वह चाहता था कि वे भी आनंदित रहें। आप ध्यान दें तो देखेंगे कि यह एक आदेश है, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुम्हें बार बार लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं होता। फिलिपी की कलीसिया को पत्र लिखना सुरक्षित था क्योंकि वे आत्मिकता में परिपक्व थे। वे पौलुस से प्रेम करते थे और पौलुस भी उनसे प्रेम करता था। वह स्वयं को उनकी घनिष्ठता में या घनिष्ठता का बोध देता था। यही कारण है कि वह कहता है, तुम्हें बार बार लिखने में मुझे तो कोई भी कष्ट नहीं होता। उन्हें पत्र लिखने में पौलुस के मन में शंका नहीं थी कि उसे वे गलत समझेंगे या नहीं, वे उसकी बात को समझ पाएंगे या नहीं, लेकिन वो कहता है, कुत्तों से चौकस रहो। मेरे मकान मालिक के पास एक कुत्ता है और यह कुत्ता जो है डाकियों अर्थात पोस्टमैन से खुश नहीं होता। जब कभी भी डाकिया वहां पर आता है तो उसे देख करके वो भौंकता है। परंतु पौलुस का अभिप्राय कुत्ते से नहीं है। हमें यशाया के वचनों से पौलुस का अभिप्राय समझ में आएगा। उसने झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय चेतावनी दी है। यशाया की पुस्तक 56 अध्याय के 10 पद में लिखा है, उसके पहरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। यशाया झूठे भविष्यवक्ताओं के विरुद्ध चेतावनी दे रहा था। क्योंकि वे जानते थे कि झूठी शांति वे दे रहे हैं और भावी विनाश की चेतावनी देने की अपेक्षा कहते थे कि सब ठीक हो जाएगा। उत्तरी राज्य इसराइल झूठे भविष्यद्वक्ताओं के कारण ही नष्ट हुआ था। उनके बंधुआई में जाने का कारण यही थे कि झूठे भविष्यद्वक्ता। अतः यशाया उन्हें चिता रहा था कि वे भ्रम में न रहें। उनकी भविष्यद्वाणियां झूठी सुरक्षा की है। वह उन्हें गूंगे कुत्ते कहता था। अतः मानवीय कुत्ते वे हैं जो परमेश्वर की सुस्पष्ट इच्छा प्रकट नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें हर प्रकार की सुविधा चाहिए और सुख सुविधा की यह लालसा कलीसिया में भी प्रवेश कर गई है। कलीसिया को मात्र ढाड़स बंधाना अत्यधिक जोखिम भरा है, क्योंकि मसीही सेवा में भी इसी की लालसा की जाती है। मेरी कलीसियाई क्षेत्र में जहां पर मैं हूं, एक प्रतिष्ठित सदस्य ने कलीसिया छोड़ दी थी, क्योंकि उसके लिए मेरे पास मन की शांति का संदेश नहीं था। मुझे आगे चलकर के पता चला कि वह अपने व्यवहार में सदाचार का व्यवहार नहीं करता था। कुछ लोग तो उसे दुराचारी भी मानते थे। ऐसे मनुष्य को वास्तव में शांति की अपेक्षा चेतावनी का संदेश सुनाया जाए तो यह उसके लिए अच्छा है। वह सोचता था कि मैं उसके व्यापार के बारे में कुछ न कहूं और न ही मैं उसके बारे में जानूं, जबकि मुझे उसका लेश मात्र भी ज्ञान नहीं था। मैं सच कहता हूं कि मैंने किसी के ऊपर कभी प्रचार नहीं किया। मैंने सदैव ही परमेश्वर के वचन का प्रचार किया है, जो शांतिदायक नहीं होता है। मेरे प्रियो, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो कैंसर से पीड़ित था और कैंसर के संबंध में वह अपने डॉक्टर के पास गया। तब उसने मन को समझाने वाली बात करते हुए उनसे कहा कि मेरे एक परिचित को भी ऐसा ही कैंसर था और वह दवाई से ठीक हो गया। उसने उससे कहा, आपको यदि दवाइयां खानी है तो मैं आपको दवाइयां दे दूंगा, परंतु दवाइयों से आपको कोई भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपकी बीमारी अधिक गंभीर है। यह शांतिदायक बात नहीं थी। उन्होंने उसे स्पष्ट कह दिया था। मेरे प्रियो, मैं आपको सत्य बताना चाहता हूं कि आपका विश्वास मुझ पर से ना हटे। आपको कैंसर है तो है। मैं तब से उनका आभारी हूं, क्योंकि यह सच्चाई जानना चाहता था कि उसमें सत्यता क्या है। क्या आप भी सच्चाई जानना चाहते हैं? यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको स्वयं को देखना होगा कि आप कहां पर हैं। यशाया के युग में अनेक झूठे भविष्यद्वक्ता थे जो प्रजा को चेतावनी देने की अपेक्षा शांति देना चाहते थे। यशाया झूठे भविष्यद्वक्ताओं को कुत्ते कहता है। आपको यह तो पता ही होगा कि शिकारी कुत्ता खतरे के प्रति अत्यधिक सावधान रहता है। यदि शेर या भेड़िया भेड़ों के पास आने का प्रयास करता है तो वह भौंक भौंक कर चेतावनी देता है और उसे भगाने का प्रयास करता है। वह किसी भी प्रकार के खतरे की चेतावनी देता है, परंतु झूठे भविष्यद्वक्ता कभी भी चेतावनी नहीं देते थे। और यही कारण था कि दक्षिणी राज्य निश्चिंत था और उन्हें जगाने के कारण यशाया के प्रयास का बैरी था। आज भी सुख सुविधा का कंबल ओढ़े लोग निश्चिंत हैं। हमें सुविधा अच्छी लगती है, बिना कुछ खोए हमें लाभ चाहिए होता है। सब कुछ आसान से मिल जाना चाहिए, हमारे दिन अच्छे व्यतीत होना चाहिए। मेरे विचार में किसी को तो भौंकने की आवश्यकता है, किसी न किसी को सामने आना ही होगा। यही कारण है कि पौलुस ने उन्हें चिताया, कुत्तों से चौकसी करो। वे जो आपसे केवल शांति की बातें करते हैं और परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, जी हाँ, बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। एक और प्रचारक दल था जो उनसे अनुचित लाभ उठाएंगे। वे सत्यनिष्ठ नहीं है। काट कूट करने वालों से चौकस रहो। वह खतना वालों के विषय कह रहा था, ये लोग मसीही विश्वासी को मूसा की व्यवस्था का पालन करने के लिए बाध्य कर रहे थे कि उद्धार और पवित्रता खतना बिना नहीं है। उनका खतना सच्चा नहीं था। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर पौलुस हमें इस बात का स्पष्टीकरण देता है कि हम में से प्रत्येक को जो शांति और शांति की बातें करते हैं चौकस रहने की आवश्यकता है। मुझे और आपको अपने आप में जांचने की आवश्यकता है ताकि हम उस सत्यता की बातों को समझ सकें, सुन सकें और कोई हमें जगाने वाला हो जो परमेश्वर का वचन है। मैं नहीं जानता कि आपका जीवन इस प्रकार से व्यतीत हो रहा है, परंतु आज आपके लिए मौका है कि आप परमेश्वर के वचन के प्रति सत्यनिष्ठ हो जाएं। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने आत्मिक जीवन में लाभ प्राप्त किया है। वचन पर बने रहें, उसका अध्ययन करें और अपने जीवन को आशीषमय बनाएं। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। छू